તારીખ 4/3/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 49.
आत्मा में जो शुद्धने का विषय हो, मूल तत्व का जो अंश है, शुद्धने द्वारा एक ही उपाधि है। दोनों जानने में आते हैं, वैराग्य का विषय हो, जो गुणभेद पर्याय भेद राजा जी संयुक्तपना अनेकपना सामने में आते हैं, लेकिन वो यही है, कौन करने लायक है, उपाधि नहीं है, तथा विकास निकलता है। कि शुद्धात्म तत्व भी ज्ञान में आया, और दूसरा पहलू जो है पर्याय का विषय है, वो भी जानने को आया। तो दोनों जानने में एक आदरने लायक है, दूसरा सिर्फ जानने लायक है, दूसरा आदरने लायक नहीं है, उपाधि नहीं है, ऐसा सारांश यहां से निकलता है। और दोनों अंश मौजूद है, तो किस अंश के तरफ झुकना चाहिए, ये एक विवेक का विषय रहता है। जो हमारे यहाँ जो आते हैं, किसका आदर करें, ये विवेक में रहता है। ऐसे मूल गाथा में तो शुद्धने को ये कहने का अभिप्राय है, फिर भी अमृतचंद्र आचार्य ने इस बात को दूसरी चीज भी जब जानने में आती है, तो अपने स्थान में वो गौण करके कैसे इसको उपाधि करना, यही विदेश है शुद्धात्मा की अनुभूति करने का उपदेश दिया। अब पंडित जयचंद्र जी का आभार है इस पर।
अनुभूति तो पर्याय होती है, अनुभूति पर्याय की अनुभूति है या कभी की अनुभूति है, इसको जरा सा प्रश्न करें।
आपको इस प्रश्न का उत्तर समझना है तो कहां खड़ा रह करके समझना है, फिर इसका उत्तर निश्चित होगा। अनुभूति शब्द है, दोनों प्रकार के शास्त्र वचन शास्त्र में पाए जाते हैं, कि द्रव्य की अनुभूति है और पर्याय की भी अनुभूति है, दोनों बात शास्त्र में है। अब दोनों बात में अर्थ कदर तो अलग अलग ही है, दोनों का अर्थ कदर इस वचन के अर्थ को अलग अलग है। अब हमें किस अर्थ का स्वीकार करें, या दोनों का स्वीकार करें, तो दोनों का स्वीकार कैसे करें, और एक का स्वीकार करें तो एक का स्वीकार कैसे करें, ये बात है। जब दोनों का स्वीकार करना है तो बात तो परस्पर विरुद्ध है, किस तरह से स्वीकार होगा। द्रव की भी अनुभूति है और पर्याय की भी अनुभूति है, दो बात तो एक तो हो ही नहीं सकते, एक साथ तो दोनों का स्वीकार कैसे करें। उसका समाधान इस तरह से निकलता है कि हमें कहां खड़ा रह करके इस विषय को ग्रहण करना है, ज्ञान है। पहले हमारा ठिकाना, हमारा स्थान हम निश्चित कर दें, तभी इसका सही उत्तर हमें मिलेगा, सही समाधान मिलेगा, वरना सही समाधान नहीं ले सकता। जहां अनुभूति ही आत्मा है ऐसा इधर तो क्या क्या इस गलों में तो आचार्य महाराज ने अनुभूति को आत्मा कहा, वो उसी से बात कहा ठीक। आत्मा की अनुभूति, पर्याय की अनुभूति और अनुभूति आत्मा, इसी से बात निकाली। अब क्या करेंगे, अब तो दो के वजह तीन हो जाएगा, तीन सवाल हो जाएगा, तो वास्तव में क्या बात है। तो सिर्फ हमें पदार्थ के वस्तु व्यवस्था का हमें विचार करना है, समझना है, तब तो अनुभूति पर्याय में पर्याय की विषय ज्ञात ब्रह्मांड ज्ञात लोग का बंधारणीय स्तर का कॉन्स्टिट्यूशनल साइड का है। तो बंधारण के हिसाब से तो निगोद से लेकर के सिद्ध तक के जितने विधिवित पर्याय वाले जीव है इस विश्व में, इसमें सबों को अपना अनुभव अपनी पर्याय का ही होता है, दूसरा कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन ये बात रही वस्तु व्यवस्था के, पर जब द्रव्य का आलम्बन लेना है तो आलम्बन के हिसाब से आश्रय के दृष्टिकोण से ये कहने में आता है कि हमें द्रव्य का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य पर्याय पर नहीं है, हम तो द्रव्य है। लक्ष्य के हिसाब से हम द्रव्य है, हम पर्याय नहीं है। तो उस विभिक्षा से ऐसा शास्त्र वचन आएगा कि द्रव्य की अनुभूति होती है, वो भी सही है, उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उसमें परमार्थिक हेतु सिद्ध होता है, आत्मकल्याण का परमार्थिक हेतु इसमें प्राप्त होता है, तो वो सही है। अब यहां तीसरी बात कही और विशिष्ट प्रकार की बात करते हुए, तो अनुभूति ही आत्मा है। अब जिस प्रश्न आत्मा ऐसा विकल्प से जाना जाता है तो भी जानने वाले को अनुभव नहीं होता है, उसको अनुभव कराने के लिए कोई एक शैली, एक विशिष्ट प्रकार की कथन पद्धति है, उसमें यही कहते हैं श्री गुरु कि अनुभूति ही आत्मा है। ये आत्मा का अनुभव कराने की प्रैक्टिकल साइड है कि अनुभूति ही आत्मा है। जैसे कृपानुदेव ने व्याख्यान सार एक के 220 नंबर के बोल में ऐसा जब अस्तित्व ग्रहण होता है, एक बार भी अस्तित्व ग्रहण होता है, मैंने भाव भाषण होता है, स्वरूप निश्चय होता है या पहचान होती है जो भी कुछ करो, तो आत्मा नजर आता है। वैसे तो नजर में आत्मा नजर आता है, फिर भी कथन पद्धति ऐसी कही कि आत्मा वहां से खिसक सकता नहीं है, नजर खिसक सकती ऐसा नहीं कहा, नजर वहां चौड़ जाती है पर नजर वहां से नहीं उखड़ती ऐसा नहीं कहा, आत्मा वहां से खिसकता नहीं, खिसक सकता नहीं, ऐसा आत्मभाव आता है। अवधस्पृष्ट आत्मा को अनुभूति क्रम में लेने से कोई आत्मा है ऐसा नजर में आता है, आत्मा रूप आत्मीयता ऐसी हो जाती है। इस प्रकार के परिणाम कराने का इसमें अंतर नहीं रहा है कि इस कथन शैली में किस प्रकार का अंतर होता है और उसमें पारमार्थिक हेतु कैसे हमारा सिद्ध होता है, ये समझने का विषय है। बात तो तीन प्रकार की आई, ऐसे अनेक प्रकार की बात आ सकती है, लेकिन इसमें हम इसका प्रयोग कैसे करें जिससे हमें लाभ हो, यहां खड़े रहकर के हम सब बात समझने हैं तो किसी बात से हमें आपत्ति नहीं आएगी, वरना विवाद हो जाएगा कि नहीं इधर ऐसा कहा इधर ऐसा कहा। अंदर ऐसा कर रहे हैं, हम तो इसको पकड़े और बोले हम तो इसको पकड़े, किसी को भी पकड़ो, आपको कल्याण होता है या नहीं होता है वो भी कल में देख लो।
किस विधि से उसको पकड़ना है, किस विधि से पकड़ना है,
वो तो क्या है,
कौन सी बात पकड़े तो हमारे काम पर,
हम कहां खड़े हैं इस पर। वास्तव में उन्होंने पहले से इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि ये समय सार है, ये उत्कृष्ट कोटि के, उत्तम कोटि के मनुष्य के जीव के सामने लिखा गया है, उसको सामने रख कर दिया। अब सबसे पहली बात यह है कि हम इस कोटि में हमारा प्रवेश है या नहीं। अगर हमारा इस कोटि में प्रवेश नहीं है तो फिर हमें कैसे इस बात लागू होगी या इस बात का हमें लाभ होगा, ये थोड़ा गंभीरता से विचार करने योग्य विषय है। जबकि हमारे समाज में क्रेज ऐसा है कि समय साथ पड़ो, गुरुदेव ने भी समय साथ सुनाया, लेकिन गुरुदेव तो समय साथ को परिणमन कर गए थे और इसलिए उनको जो भी आत्मलाभ हुआ इस भाव में, एक अपूर्व घटना है। ऐसी घटनाएं साधना के लिए एक अपूर्व घटना है। तो जिसको जिससे लाभ होता है वही इसका परमात्मा बनाता है। तो गुरुदेव के लिए समय साथ परमात्मा, अगर हम बना ले समय साथ में परमात्मा है तो ये बात तो सही है, लेकिन हम खड़े रहे कहीं और अगर हम गुरुदेव की नकल करने को जाएंगे तो ये कोई नकल का तो विषय नहीं है। काम में तो असल ये चाहिए, नकल से तो कोई काम होने वाला नहीं है। ये बात को सबसे पहले देखते हैं कि हम योग्य है ये शुद्ध निर्गाढ़ विषय ग्रहण कर सके, ऐसी हमारे उत्तम कोटि की भूमिका है कि जान नहीं आए हैं, इसका पहले विचार करना ठीक है। अज्ञानी के अनेक भेद है, अज्ञानी ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी होता है, अग्रहित मिथ्या दृष्टि भी होता है, अग्रहित मिथ्या दृष्टि के भी कई भेद है, लेकिन तीन ही भेद सोचे तो उतना है कि जघन्य बुद्धि वाला भी है, मध्यम कोटि वाला भी है और उत्तम कोटि वाला भी है। अपने परिणाम को समझने से पता चलता है कि हम कहाँ, हमारी कौन सी स्थिति है और अब हमें क्या चाहिए, स्थिति में हमें क्या चाहिए, जहाँ हम खड़े हैं स्थिति में हमें चाहिए क्या चाहिए, जिससे हम एक कदम आगे बढ़े, जहाँ भी खड़े हैं यहाँ से एक कदम हम आगे बढ़े।
गुरुदेव के सूत्र के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि हमारी शुरुआत ही नहीं हुई, गुरुदेव के सूत्र के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि हमारी शुरुआत ही नहीं हुई।
जब शुरुआत ही नहीं हुई मुमुक्षुता की, उत्तम कोटि के मुमुक्षुता का तो सवाल ही पैदा होता नहीं है। सूत्र दिया है ना गुरुदेव ने, शुरुआत वाला सूत्र दिया है, तो जो पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत करता है उसे ही वास्तविक शुरुआत होती है। इसके पहले शुरुआत तो हुई ही नहीं तो कुछ आगे कुछ विशेषता होगी, ये बात तो एक अच्छा भ्रम है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसी बात है। तो सबसे पहले हमें गुरु आज्ञा में चलना है, किस समय में चलना है, कैसे चलना है, गुरु के मार्ग पर, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर, चले हुए मार्ग पर, कहे हुए मार्ग पर चलना है। क्यों उन्होंने ये बात क्यों कही, सवाल तो यहां से आना चाहिए कि ऐसी बात क्यों कही, कहां से कही, शास्त्र में से कही या अपने अनुभव में से कही, तो वास्तव में अपने अनुभव से वो बात कही है। फिर ये बात का मिलान शास्त्र से अवश्य होता है। 17-18 गाथा में वो बात दिया है कि जो मोक्षार्थी है वही वेद ज्ञान करेगा और जो वेद ज्ञान करेगा वही अनुभूति में आ सकता है। संक्षेप में ले लो तो मोक्षार्थी ही नहीं हुआ है, पूर्णता का लक्ष्य ही नहीं हुआ है, दोनों एक ही बात है। तो आगे की कोई बात सही प्रकार से मार्ग तक पहुंचने के लिए हो सकती है ऐसा कभी बनता तो बहुत अनुभव सिद्ध वचन है। कैसा वचन है ये? आचार्य का भी है और गुरुदेव का भी है और सभी ज्ञान। इसका मतलब क्या है कि सभी ज्ञानियों का दो तत्व होता ही नहीं है। बात है ना आपको सिद्ध में आवल ज्ञानी थे गया वर्तमान में हो आश्रय काल भविष्य में मार्ग भेद नहीं कोई उपाय का प्रेम सेवा करो मार्ग को उपाय को बात। इसलिए बात को थोड़ी गंभीरता से विचार करनी होती है। ऐसे पढ़ जाने से कोई काम हो जाता है, सारी जिंदगी पढ़ते रहे तो कोई काम हो जाता है ऐसा तो नहीं है। काम तो काम की व्यवस्था से होगा। हम यहाँ भावार्थ में पंडित जयचंद्र जी क्या कहते हैं, आत्मा पांच प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादि काल से कर्म कुदरत के संबंध से बंधा हुआ कर्म कुदरत के स्पर्श वाला दिखाई देता है। ये पर्यायाचित में का उसे पहले प्रतिपादन करते हैं। अनादि काल से या आत्मा कर्म के संबंध वाला कर्म से बंधा हुआ देखने में आ रहा है संसार में। कर्म के निमित्त से होने वाले नर नारद आदि परिणाम में भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। कभी नरक नारी में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, कभी वो कवा शक्ति के अभिभाग प्रतिच्छेद में शक्ति के अंश बढ़ते भी हैं और बढ़ते ही हैं। ये वस्तु स्वभाव है, इसलिए वो नित्य नियत भी रूप दिखाई नहीं देता। अवस्था में वदगत देखने में आती है, इसलिए एक स्थिति एक से अवस्था देखने में नहीं आ रही। और वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। एक ही आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनेक प्रकार के जो गुण है इसकी विशेषताएं हैं। जो भी गुण है वो तो पदार्थ की विशेषताएं हैं और ऐसा विशेषता वाला भी दिखाई देता है। और कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों पर सही वह सुख दुख रूपी दिखाई देता है। राजा देसाई ने पूरा सुख दुख साथ साथ में दिया। जैसे मैंने विशेष मान्यता मूल में तो पहले राजा देसाई संयुक्त पड़ा और कैसे संयुक्त पड़ा वही पढ़ा लिया है। अमृतचंद्राचार्य ने टीका में सुख दुख की बात नहीं दी है, प्रयोजन है इसलिए इस बात को किया है। कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों पर सही वह सुख दुख दिखाई देता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव रूप भी है कि जीव को सुख दुख ऐसे दो प्रकार के भाव प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आते हैं। यह सब अशुद्ध द्रव्यात्मक रूप व्यवहार में का विषय है। बाप को द्रव्य की कही इसलिए द्रव्यात्मक नहीं बोला। जीव द्रव्य की बात चलेगी इसलिए उसको द्रव्यात्मक नहीं बोला और ये सभी अशुद्धता के पास चले, इसलिए उसको अशुद्ध द्रव्यार्थ ऐसा मैं का विषय लेने में आया है। वो ज्ञान का प्रयोजन ऐसे द्रव की अशुद्धता को ही जानने का रहता है, ऐसे प्रमाण ज्ञान का अंश को अशुद्ध द्रव्यार्थ नहीं कहने में आना है। नहीं अशुद्ध नहीं है, नहीं तो ज्ञान का पर्याय है और शुद्ध ज्ञान का पर्याय है। चाहे शुद्ध नहीं हो तो भी शुद्ध ज्ञान का पर्याय है, चाहे अशुद्ध नहीं हो तो भी शुद्ध ज्ञान का पर्याय है, क्योंकि नहीं तो नहीं है ज्ञान का पर्याय है, सम्यक ज्ञान का अंश है, सम्यक प्रमाण ज्ञान का एक अंश है, उसी को नहीं कहने में आता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो, मैंने ऐसे इस दृष्टिकोण से पदार्थ को देखा जाए तो ऐसी सब परिस्थिति सत्यार्थ है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई माया नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई झूठ मूठ नहीं है, ये सत्यार्थ है इस दृष्टिकोण से। परंतु बस ये परंतु लगाया है, जानने का विषय इससे आगे नहीं जाना है, जान करके उसको गौण कर देना है। लेकिन यहां से एक सिद्धांत जो मनुष्य को सीखना चाहिए वो ऐसा है कि शास्त्र में कितनी भी बात आती हो, हमारे पास वो खाते हैं खतान खताने कर खताने के लिए, एक जानने का और एक आदर करने का, मैंने उपाधि करने का, ग्रहण करने का, तो दो प्रकार का जो है खाते हैं, उसमें जो भी सामने बात आए उसके साथ साथ खतौनी भी बजानी चाहिए। इस स्वाध्याय का कार्य करने की स्वाध्याय पद्धति है, अगर ऐसी पद्धति से स्वाध्याय नहीं करें तो कब किसको हम गौण करेंगे, कब किसको मुख्य करेंगे, इसका कोई ठिकाना, जब ऐसा दृष्टिकोण ही हमारे पास नहीं है तो क्या कुछ हो जाएगा, इसको कोई व्यवस्था बैठेगी
जी,
तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी इसका पता ही नहीं रहेगा, खुद को ही पता नहीं रहेगा। इसलिए हमारा दृष्टिकोण इस विषय में साफ होना चाहिए कि कौन सी बात सामने आई, वो उपाधि है या जान करके जानकारी के खाते में हटा देने की है, बस उतना बाइफर्केशन चालू रहना चाहिए। जो भी जवाब जो ही खाते हैं, जो भी बात सामने आती है, अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वाध्याय की पद्धति है वो सही नहीं। इसलिए आप यहां से ये बात निकलती है, जहां से परंतु कहते हैं वहां से ये बात निकलती है,
एक
अच्छी सुविधा है, ये इस मार्ग की अच्छी सुविधा है कि अगर हमने एक बात उपाधि करने की अच्छी तरह ग्रहण कर दी तो और सब बातें जानने के रह जाएगी, क्योंकि चक्कर में पड़ने की बात नहीं रहती, उतना करने से भी बहुत बढ़िया बात है। क्या है कि शास्त्र में कथन शैली यहां तक भी चली है कि कभी पुण्य को शुभ को कृपा दे शास्त्र का बोल देते हैं, जहां अशुभ को ये करने की बात आती है तो शुभ को उपाधि भी कहेंगे, कभी प्रकरण ऐसा चलता हो तो प्रकरण में से ऐसा भी शास्त्र होता है। लेकिन एक ही खाते की एंट्री है, ये मुझे सब समझ लेना है, कहीं भी ऐसा नहीं हो गए कि ऐसा क्यों कहा, ये उपाधि खाते की एंट्री नहीं थी तो उसको उपाधि क्यों करे, जमा क्यों करे, तो उधार खाते की है क्यों, कि जमा का उधार हो या उधार का जमा होते हैं, आज तक डबल नुकसान होता है, कितना भूले क्योंकि नुकसान डबल होता है, 500 रुपया दिया उधार करके जब तुमने जमा कर लिया तो खाते में 1000 क्रेडिट साइड का बैलेंस बढ़ जाएगा, डबल नुकसान हो जाएगा, इसलिए सावधानी से काम करना है। तो ये समीसार का मुख्य आशय है कि एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब कुछ नहीं है, सब एक जानने का खतरा है। यानी पर्याय का, व्यवहार का जितना भी विषय है वो तो सबसे जानने का ही होता है, इससे आगे इसकी कोई मर्यादा नहीं है। बस इतनी छोटी सी बात पकड़ ले तो फिर चाहे अध्यात्म पर्याय हो, क्या ग्रंथ ग्रंथों में, शास्त्रों में, सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, मुनि दशा, मोक्ष पर्याय, केवल ज्ञानाधीन परमात्म दशा, उसकी बहुत महिमा आई है। इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है कि भुलावा में वो आश्रय करने का भाव हो जाता है, अरे ऐसा हमको भावना है, और ज्ञानी भी कभी भावना भरते हैं तो वो अवसर ऐसा मुझे कब आएगा। फिर भी
ऐसा
सबूत इसमें ही है, इसका सबूत इसमें क्या है, भव क्षेत्र शुद्ध वरते समोक्ष को एक कोटि में रख दिया है, शुभ शुद्ध को एक कोटि में नहीं रखा, पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष और संसार के पर्याय जो भाव दोनों को एक कोटि में रखा, तो दोनों जानने का विषय है, संभाव से जान लो, दोनों में से एक ही उपाधेय नहीं है। ठीक, उपाधेय तो एक हमारा शुद्धात्मा ही है, ऐसा यहां से निकलता है। कहते हैं कि इस अपेक्षा से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, अपने अपने स्थान में है, जानकारी के खाते में खता लो उसको, परंतु आत्मा का एक स्वभाव भी समय से ग्रहण नहीं होता, इस नये का विषय अशुद्ध द्रव्य नये का विषय नहीं होने सीधा आत्मा का एक स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, सफेद खंड स्वभाव है, तो उस तरह से ग्रहण नहीं होता है। और एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसा जाना जा सकता है, प्रश्न उठाया, जाना जा सकता ही नहीं है। एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, इसलिए दूसरे ग्रह को उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थी ग्रह को, दूसरे ग्रह को माने कि उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थी ग्रह को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर के उसे शुद्धने की दृष्टि से सर्वपद्रव्यों के निम्न, सर्व पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रही, विषयों से विशेषों से रही और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व पांच भावों से जो अनेक प्रकार का है वह अद्वितीय है और असंख्यात है, तो विशेष बात नहीं है इसका। इसलिए दूसरे ग्रह को यानी अशुद्ध द्रव्यार्थ से विरुद्ध ऐसा जो शुद्ध द्रव्यार्थ में है उसमें को ग्रहण करके, उसमें को अंगीकार करके, उसमें स्वरूप परिणमन करके ग्रहण करने के वो बात है। एक असाधारण ज्ञानक मात्र आत्मा का भाव लेकर के क्या होता है, ऐसा भाव लेना, मैं ऐसा हूं,
ऐसा भाव लेना।
क्या एक असाधारण व्यायाम मात्र में हूं ऐसा भाव लेना, ज्ञान मात्र का मंत्र है, समय सार का मंत्र है, ऐसा भाव में लेना। और वैसे भाव को अष्टि से ये भाव लिया, नास्ति से क्या करना, ये नास्ति से कैसे भाव होते हैं, कि उसे शुद्ध नहीं की दृष्टि से सर्वपर द्रव्यों से भिन्न देखना, पर द्रव्य दिखाई देगा लेकिन पर को पर से जानने से भी ज्ञान होना है, पर को पर रूप से जानने से भेद ज्ञान होकर के समय ज्ञान होता है, और पर को पर रूप से नहीं जानने से अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। इसलिए सर्व परद्रव्यों से भिन्न अपने को जान करके और सर्व पर्यायों में एकाकार, देखो ये बात थोड़ी विशिष्ट है, चैतन्य की ये बात थोड़ी विशिष्ट है, द्रव्य तो पर्याय में आता नहीं, और यहां जैसे कहते हैं कि पर्यायों में आया कहां से पर्याय, ये बात थोड़ी विशिष्ट इसलिए है कि हम जो द्रव्य पर्याय का भेद करते हैं वो भेद नहीं के दृष्टिकोण से है, और भेद नहीं को भी है भार नहीं कहते हैं, बच्चा चाहिए कार इस विषय की सूक्ष्मता में लेते हैं कि अनित्य पर्याय को व्यवहार होने का विषय है, लेकिन नित्य द्रव्य ऐसा भेद पाड़ना वो भी व्यवहार नहीं का विषय। क्या इस अलिया है 700 उत्तरार्ध के 761 का विषय क्या है कि अनुभव स्वरूप है, नित्य है नित्य है, ऐसा जो आत्मा अनुभव स्वरूप है यही निश्चय का विषय है, और नित्य अनित्य दोनों पहले प्रमाण का विषय है, व्यवहार निश्चय और प्रमाण इस तरह से दिया है, जो द्रव्य पर्याय आत्मक है वो प्रमाण का विषय है, नित्य अनित्य दोनों व्यवहार नहीं का विषय है, और अगर नित्य है ना अनित्य है अनुभव स्वरूप है वो निश्चय का विषय है, नित्य वेदांत का नित्य यहाँ से निकला है, नित्य नित्य करके पुकारा है, ऐसा कर लोग बोलते हैं, वो दूर धर्म में नित्य आया है उसमें वो पकड़ लिया है, यहाँ ऐसा कहते हैं कि पर्याय सर्व पर्यायों में एक आकार है, तो सर्व पर्याय तो एक आकार है, पर्याय तो अनेक आकार है फिर भी पर्यायों में एक आकार है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपत्ति है, अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें क्या तकलीफ है, क्या आपत्ति है कि हमें हमारे ज्ञान में ज्ञान स्वभाव मिलता नहीं, ज्ञान स्वभाव क्यों कहा पाया जाता है, क्या से पाया जाता है, अनुभूति से पाया जाता है, ज्ञान वेदन से पाया जाता है, अगर वो पर्याय में होता ही नहीं है तो वहां से पाया नहीं जाता, इसलिए पर्याय में भी है स्वभाव, पर्याय में भी है व्यापक रूप है, क्या वहां तक लेते हैं ये व्यापक रूप है, जैसा सामान्य में द्रव्य गुण में व्यापक है आत्मा, ऐसा ही पर्याय में व्यापक रूप है, लक्ष्य लक्षण की चर्चा का प्रवचन देखिए, वरना पता ही नहीं लगता इसका, आत्मा का पता कहां से लगा, जो त्रिकाली है वो तो छिपा हुआ है, नौ तत्वों में चैतन्य ज्योति है लेकिन छिपी हुई है, नहीं ऐसा नहीं है, तेरे का अनुभूति है, चलती चलती है, चल गई वो बात, चल गई है। पाप तत्वों में भी लिया है, पुण्य तत्वों में भी लिया, सब में लिया, नवों तत्वों में चैतन्य देती। तो ये जो अनुभव स्वरूप आत्मा है, केवल नित्य होता तो, केवल नित्य होता तो पर्याय में इसका पता चलता, और केवल पर्याय रूप होता तो पर्याय का नाश होने से इसका भी नाश हो जाता, मृत्यु हो जाता इसका। गाथा और टीका से विशिष्ट बातें अपने आवाज में प्रकाशित की है, इसके बहुत सबूत मिलते हैं इस ग्रंथ में। सातवीं गाथा का भावार्थ ऐसा ही है, ग्यारहवीं गाथा का भावार्थ भी ऐसा ही है, और इधर चौदहवीं का भावार्थ और कई बहुत सी गाथा में ऐसी बात है। ऐसे क्यों तो अधिक ख्याल में आता है कि ऐसा कहने में कोई और स्पष्टता हो जाएगी, स्पष्टता करते हैं उपयोग चल जाता है। कभी कभी आचार्यों का उपयोग आत्मा में विशेष रूप से होने से भाव नहीं आता होता, प्रवचन में उतना नहीं आता, तो बहुत खुद बात कर देते हैं संक्षेप में, दो शब्द में, एक शब्द में, पांच शब्द में, नारियल बात को भी करते हैं, क्योंकि नीचे के पुरस्थान वाले को उपयोग की प्रवृत्ति और अधिक भार होने से मुनि दशा के मुकाबले में, तो अधिक स्पष्टता उनके ज्ञान में भाषित होती है, तो कर देते हैं। ज्ञान तो आचार्य महाराज का विशेष है, लेकिन उपयोग चले तो ना, क्योंकि ये प्रवचन करना ये भी बहिर्मुख उपयोग की प्रवृत्ति है, ये अनात्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है। अध्यात्म में ऐसा आएगा कि आत्मा की प्रवृत्ति नहीं है, वो अनात्मा की प्रवृत्ति है, ऐसा कहेंगे। मुनि दशा में तो बहुत अध्यात्म में लीनता रहती है, पाप निकल गई सब निकल गई, उपयोग चल गया तो चल गया, नहीं चला तो वहां कितनी भी बात जो है तो अपने ज्ञान के पेट में रहना बड़ा ध्यान करते, ज्ञान के पेट में तो बहुत भरा है, वो तो उतना भरा है कि नीचे वाले की तो ताकत नहीं है कि वहां तक पहुंच उसकी हो सके। जैसे जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे बातें भावार्थ में होती है, वो लोग तो बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते थे, कभी कभी बहुत प्रसन्न। ये बात विशेष नहीं है यहाँ पर कि सर्व पर्यायों में एकाकार आने वृत्ति से रहित एक रूप, विशेषणों से रहित यानी गुण भेदों से रहित, अभेद अनंत गुणों का एक रूप और नैमित्तिक भावों से भी रही थी, तो विकारी भाव है तो कर्म के नियमित के साथ संबंध रखने वाला है, इसलिए इससे भी रही जो देखा जाए सब वही प्रेत मैंने नाश कर दिया है। तो सर्व पांच भावों से जो अनेक प्रकार का है वह अनेक प्रकार का मोक्ष स्वरूप में देखी जाती नहीं है, अनुभव में आती नहीं है, इसलिए वो क्यों अनुभव में नहीं आती, वहां है नहीं इसलिए अनुभव में नहीं आती है, वहां होती तो अनुभव में आ जाती लेकिन वहां है नहीं, ए भूत है नहीं, भूत मैंने होना ए भूत मैंने है नहीं। दृष्टि का विषय जो है वो अकेला भेद रहित और पर्याय रहित है, भेद भी नहीं, पर्याय तो थोड़ी बहुत स्थूल भेद है, गुण भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, भेद रहित है, अभेद ऐसा स्वरूप है।
यहाँ पांच भावों से भेद जो कहा ना, अनेक प्रकार का है, ये पांच भाव
अवधस्पष्टा ने लिया, पहले लिया अवधस्पष्टा ने
लिया,
अवधस्पष्टा ने पांच भाव से रही तो वहां तो प्रत्येक पक्ष में अवधस्पष्ट हो गया ना, वेद से कहें कि ये पांच प्रकार के है तो एक प्रकार का नाम, पांचों का एक भाव प्रवचन में कहते हैं, पांच का वर्णन करते थे, क्या उसका स्पष्टीकरण देते थे कि पांच भाव वहां नहीं है, अगर स्पष्टता पांच प्रकार वहां नहीं देखना है, वहां तो पांचों का एक रूप है उसको देखना है, जैसे नाम लेने से पूरा मनुष्य का फोटो ज्ञान में आ जाता है, जिसका नाम लिया बराबर जान लिया यही व्यक्ति, तो सब विशेषताएं गर्भित हो जाती है, अभेद में भेद सब गर्भित ज्ञान में आ जाते हैं, ज्ञान में गर्भित हो जाते हैं। यहां यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, यहां यह समझना चाहिए कि वस्तु का जो स्वरूप है जो तो अनंत धर्मात्मक है, कि वह बैलेंस रखने के लिए स्पष्टीकरण करते हैं, अभी बैठन जी ने एक विशेष करुणा से बात की तो यही है कि आचार्य महाराज की बात सुनकर के कोई एकांत में नहीं चला जाए, किसी को एकांत नहीं हो जाए, ग्रंथ निश्चय करना है, निश्चय की मुख्यता जिसमें कराई है, ऐसा अगर होने पर भी अगर संतुलन नहीं रहा तो साधी की सिद्धि होने वाली नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है, सत्य गाथा के भावार्थ में भी बहुत स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि वहां भी यही क्या एक आत्मा की बात चली है, मैं प्रबंध भी नहीं और मैं अप्रबंध भी नहीं, इधर भी कहा है कि आत्मा तो अवध स्पष्ट है, ठीक है आचार्य महाराज को मुख्य रूप से यही दर्शाना है, लेकिन दूसरी चीज है तो क्या वो खड़ा है से किस तरह से उसको देखना जानना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है, अगर उस देखने जानने में संतुलन नहीं रहता है तो गड़बड़ हो जाती है, निश्चय आप हो जाता है। यहां यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है, ये ज्ञान में रहना चाहिए, वस्तु स्वरूप तो अनंत धर्म वाला है, वह श्यादवान से यथार्थ सिद्ध होता है, कथन पद्धति में अपेक्षावान से कथन चिद ऐसा है, ऐसा कहने से उसकी बराबर स्थिति होती है, कहने वहां नहीं भी गैर समझ होती नहीं है, सही समझ होती है, आत्मा भी अनंत धर्म वाला है, यह वस्तु मैंने छह पदार्थ लेना, आत्मा भी एक वस्तु होने से अनंत धर्म वाला है, उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ उद्गल के संयोग से हो गए हैं, कुछ तो ऐसे धर्म है कि जिससे उद्गल के साथ कोई निमित्त नहीं है, संबंध भी नहीं है, जैसे पारिणामिक इसको कोई कर्म प्रकृति की कोई भी अवस्था के साथ उसको कुछ लेना देना नहीं, तो कर्म निरपेक्ष भाव है, आत्मा का मूल स्वरूप है, वो स्वाभाविक
स्वरूप है,
सद्गुण हानि वृद्धि का गुण आया पर्याय नहीं, पारिणामिक जो भाव है उसमें हानि वृद्धि नहीं होती, वो तो एक रूप भाव है, विकास एक रूप स्वाभाविक भाव है, जैसे परिणाम शक्ति है लेकिन परिणाम का उत्पाद इसमें नहीं है, ऐसे अवध लघु गुण है लेकिन इसकी जो पर्याय संपूर्ण हानि वृद्धि है वो उसमें नहीं है, जिसमें उत्पन्न नहीं होता है उसमें कर्म की अपेक्षा है, संयोग की या वियोग की। मोक्ष है उसमें वियोग की अपेक्षा है, पर बंध है उसमें रजोगुण भाव है, चार भाव ये उदय क्षय और शारीरिक विकार होता है उससे ही मतलब है। इसलिए अनंत गुण के शुद्ध पर्याय है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। भव्यत्व और भव्यत्व और अशुद्ध परिणामी है, शुद्ध परिणामी नहीं है, इसलिए ये शुद्ध द्रव्य चिंतन के विषय में नहीं आना। अशुद्ध द्रव्य चिंतन के विषय में या व्यवहारणी के विषय में पर्याया चिंतन के विषय में नाम परिणामी के फिर भी ऐसा है, ऐसा इतना भेद समझना चाहिए। परिणामी कहो और द्रव्य चिंतन का विषय नहीं है ऐसा कहो, ऐसा भी है। तो जहां जितना भेद प्रभेद है और कहने का जो अभिप्राय है तो समझ लेना चाहिए। उदय को कर्म का उदय की अपेक्षा है, उपशम भाव को कर्म के उपशम निमित्त पड़ा है, क्षोभ भाव को कर्म के क्षोभ का निमित्त पड़ा है, और मोक्ष है और क्षायिक भाव जिसको कहते हैं उसमें कर्म क्षय का क्षायिक कहते हैं मोक्ष भाव। किंतु पंचम भाव जो परिणामी भाव है उसमें ऐसा कोई निमित्त निमित्त शब्द नाम नहीं है, होता नहीं है। एक जीव का मूल स्वरूप है, परिणामी भाव करो या ज्ञायक भाव करो एक ही बात है। तो आत्मा के कुछ धर्म तो स्वाभाविक है और कुछ पुद्गल कर्म के संयोग से होते हैं। जो कर्म के संयोग से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है, और तत्संबंधी जो सुख दुख आदि होते हैं उन्हें भोगना है, तो सुख दुख साथ में दे देते हैं। अगर भी कि जो कर्म संयोग से होते हैं यानी कर्म के निमित्त से होते हैं उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है, और जैसे जैसे प्रवृत्ति होती है तो संसार में जो सुख दुख कहे जाते हैं ऐसे परिणामों को वो खुद भोगता है, खुद करता भी है और खुद भोगता भी है। अच्छे करता की बात नहीं है, करता भी है और भोगता भी है। इस आत्मा की अनादिकाएं से पर्याय बुद्धि है, उसे अनादि अनंत आत्मा का ज्ञान नहीं है। क्या स्थिति है अनादि से, अनादि अनंत जो संसार में आत्मा परिभ्रमण करता है उसको अनादिका से अज्ञान रूप पर्याय बुद्धि है, अज्ञान उतना नहीं लिया। ज्ञान से पर्याय बुद्धि है, पर्याय बुद्धि माने कहीं चला नहीं गया है, लेकिन वो भूल गया है, अनादि से वो भूला हुआ है, अपने मूल स्वरूप को चला नहीं जाता। चला जाता तो बहुत आपत्ति हो जाती है, लेने को जाना पड़ता। अनादि से है प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त माने अनुभव, अनादि से है लेकिन अनुभव नहीं है, ये तकलीफ है। विचित्रता कैसे, हम जो स्वरूप से हमारे स्वरूप से अनादि से है उसी का हमें अनुभव नहीं है। बहुत संपत्ति भरी है इसमें, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत सुख आदि बहुत वैभव भरा है। स्वीकार नहीं है, जिसका स्वीकार नहीं है तो है पर भी नहीं है के बराबर है। जैसे आदमी ऐसा था कि जिसके घर के कमरे में ही बहुत संपत्ति जमीन में पुरुषों ने खटा करके गाढ़ा करके डाली हुई थी, रखी हुई थी, पर वो उस विचार को खबर नहीं थी। तो ये रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए दरिद्र अवस्था में अपने दरिद्र मान करके, अपने खुद को दरिद्र मान करके भीख मांगता था। ऐसे संसार असंसार में आत्मा अपनी संपत्ति का अनजान होने से उज्जवल परमाणु के पास भी मांगता है। एक उज्जवल परमाणु है, उसको भगवान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हे भगवान तू मुझे सुख दे, जैसे कैसे भी तू मुझे सुख दे। लेकिन वो परमाणु के पास सुख है नहीं तो देगा कहां से? जिसके पास सुख नहीं है वो देगा भी कहां से? देना चाहे तो भी। लेकिन हम तो स्वयं को भूले हुए हैं, तो यही हालत है। अगर उसको संभाले तो पूरी की पूरी हालत बदल जाती है। वो संपत्ति कहां से कहीं से लानी नहीं है, और हमारा मूल स्वरूप ऐसा है कि जहां नहीं गुण को प्रकट भी करना है ना दोष को निकालना भी है। इंद्रियन पर्याय सीखने का पर्याय में रहता है, हमारे स्वरूप में नहीं रहता है। ऐसी दृष्टि जैसे कैसे भी एक बार हो जाए तो फिर कोई आपत्ति, कोई मुश्किली, कोई ऐसा कुछ भी कहीं गड़बड़ रहती नहीं है। जैसे कैसे भी दृष्टि हो जाए, दृष्टि हो जाए, मैंने ऐसा अस्तित्व का ग्रहण हो जाए तो फिर निवेदन हो जाता है। वरना दुख दुख और दुख मय पूरे के पूरे अनुभव उसको दुख को ही अनुभव करेंगे। कि जो कर्म के संयोग से यानी कर्म के आलंबन से उदय के आलंबन से जो होते हैं भाव, उन भावों में आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती रहती है, और उस प्रवृत्ति से उनको सुख दुख भी होते हैं, लेकिन दुख होता है। ऐसा यह आत्मा के अनादि कारण ज्ञान से पर्याय होते हैं, कर्मजनित अवस्था रूप ही अपने को मान करके जो सुखी सुखी होता है ना, वास्तव में उसको कोई समझ नहीं है, फिर भी मान लिया। मान्यता के विषय को माना नहीं, जो मान्यता करने लायक नहीं है उसको माना है, ये सुखी सुखी हुए बिना रहेगा। तो पर्याय बुद्धि है क्योंकि उसे अनादि आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपना मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
ज्ञान तो है,
ज्ञान है लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं है, ये तकलीफ है। तो इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है, ऐसे आत्मा को कौन बताएगा? सर्वज्ञ के आगम बताएगा, दूसरे वाले आगम कोई बता सकता
नहीं। उनके मानेंगे तो मानेंगे,
दूसरे के नहीं मानना चाहिए। दूसरे आगमों के, दूसरे देवों की, दूसरे गुरु की, दूसरे आगमों की मानना चाहिए नहीं। तो मान्यता के लिए अनायसन है। कैसे है? तो भाई कुछ गुरु को शास्त्र है वो मानने लायक नहीं है, वो अनायसन है। और वेद सुगुरु सुशास्त्र है जो शुद्धात्मा के अपने मूल स्वरूप को बताने वाले हैं, तो मान्यता करने मान्य करने लायक है, इसलिए उनको धर्म के आयतन कहने में आते हैं। समय का विषय हो और कर्मस्थ जीव को शुद्ध दुर्गा से जाना जाता है, आया जाता है ऐसा, क्योंकि फिर भी कर्म नए नहीं होते, केवल ज्ञानी उनको तो नए नहीं होते। और जब ज्ञान का विषय कथन में आता है तब यह कथन किसी न किसी नए विभाजन में समाविष्ट होता है। कथन नयात्मक होता है या प्रमाणात्मक होता है। नयात्मक कथन को भी ज्ञान के अपेक्षा से प्रमाणात्मक शून्य, क्योंकि नए प्रमाण बिना समय कभी प्रवृत्ति करता नहीं है। इसलिए कथन में मर्यादा है शब्दों की, वचनों में, इसलिए वचन जो है वो किसी न किसी नए का होता है या प्रमाण से सब होता है, प्रमाण के विषय पदार्थ को दर्शाने के लिए होता है। यानी वचन पूरा पदार्थ को दर्शाता है, बचाता है, कथित करता है, या कभी पदार्थ के किसी एक धर्म को या किसी एक अंश को बताता है, ऐसे वचन की मर्यादा है। एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए आत्मस्वरूप के विषय में जो भी कथन होते हैं ये कथन से सभी लोग कोई बात नहीं समझ सकते। इसका कारण यही है कि कथन में कहने पर कुछ न कुछ विकृति आई जाती है, विकृति का कुछ अंश इसमें आता है, क्योंकि समग्र पदार्थ को एक साथ कहने को वचन में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए सिर्फ वचन से अज्ञान को ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं बनता, यही कारण है।
ज्ञान होने में सब कुछ का निमित्त आवश्यक है।
अनादि अनंत काल में किसी जीव को, किसी अज्ञानी जीव को बिना सत्पुरुष ज्ञान हुआ या होगा ये संभव ही नहीं है, अशक्य है। देशनालक्ष्मी ग्रंथ का सिद्धांत है कि वैसे तो देशनालक्ष्मी से आगे की परिस्थिति है जो ज्ञान होता है उनका, इसलिए ऐसा तो कभी बनेगा भी नहीं, बना भी नहीं है। बिना सत्पुरुष किसी को ज्ञान हुआ हो, बिना गुरु किसी को ज्ञान हुआ हो, ऐसा तो कभी बनने वाला है ही नहीं। चाहे कितना भी बुद्धिमान हो और कितना ज्ञान हो सकता हो, ज्ञान के बिना ज्ञान की प्राप्ति कभी होती नहीं है। और कहने जा रहा था, और यह बात निमित्ताधीन दृष्टि की नहीं है, किंतु यह बात वस्तु स्वरूप के वस्तु का स्वरूप को स्थापित करने वाली है। यह वस्तु का स्वरूप है क्या? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ये मर्यादा है, ज्ञान प्राप्त करने की ये मर्यादा है। इस मर्यादा का उल्लंघन है, वस्तु स्वरूप छूट जाए, मिट जाए, अभाव हो जाए, तो दूसरी बात है। तो अपनी योग्यता पर ध्यान नहीं जाएगा, पर गुरु से ज्ञान हो गया नहीं, न तो गुरु से ज्ञान होता है न गुरु बिना भी ज्ञान होता है। गुरु से ज्ञान होता है ऐसा एकांत माने तो भी मिथ्या दृष्टि है, और गुरु बिना ज्ञान हो जाएगा ऐसा माने तो भी उतना ही मिथ्या दृष्टि है। तो गुरुदेव को साफ कर देते हैं कि निमित्त से काम होता नहीं, और निमित्त बिना माने तो भी दोनों मिथ्या दृष्टि है। खुला कहते हैं निमित्त से होता नहीं, निमित्त से माने तो मिथ्या दृष्टि, और बिना निमित्त से माने तो भी मिथ्या दृष्टि, और दोनों पर उसको विरुद्ध है। वो करना क्या?
बैलेंस कैसे?
बैलेंस अपना आत्म कल्याण के लिए अपन तैयार हो जाए, और एक निष्ठा से प्रमाणिकता से, हाँ, हम हमारा आत्मकल्याण करना चाहें तो पहले चले जाएगा। वास्तव में हमारी नीयत सही नहीं है तो कोई आत्मकल्याण नहीं हुआ है, इसका यही एक कारण है कि हमारी नीयत साफ नहीं है। कहते हैं, बोलते हैं या विचारते हैं कि आत्मकल्याण करना है, वास्तव में आत्मकल्याण करने का प्रसंग आता है तब हम विचलित जाते हैं। तो आत्मकल्याण ऐसे तो कभी होने वाला
ऐसा
लिखा
है, आत्मा
गुरु
आत्मा ही है।
हाँ, भीतर से सुध आती है। जब सही आत्मकल्याण करने का निर्धार के बाद अंतर प्रयोग चलता है तो प्रयोग से ही आत्मा अपने आप को प्रयोग सिखाता है, क्योंकि वहां तो गुरु की भी पहुंच नहीं है प्रयोग सिखाने में। दृष्टांत ले ले में कि एक 15 साल का लड़का साइकिल चलाने को सीखता है, उसको बैलेंस रखना पड़ता है, तो आउटलाइन तो उनको ही दी जाती है, उनको बैलेंस रखना है, न इधर आना न उधर झुकना, कई बार दोनों से एक और झुकने से निकल जाओगे तो साइकिल चलेगी नहीं तुम्हारे पास, तो आउटलाइन दी हुई। जब जब वो प्रैक्टिस करता है तो बैलेंस कैसे रखना उसको समझ कौन कौन देता है, बैलेंस रखने की समझ उसको कौन देता है, इसका खुद की प्रैक्टिस ही वो समझ देती है। जैसे भाई रोटी बनाती है तो उसको भी कहने वाला है कि तुम बैलेंस रखो वरना रोटी एक जगह से मोटी हो जाएगी और एक जगह से पतले हो जाएंगे, बराबर बनेगी नहीं। और बेलन घुमाते बेलन ही कहते नहीं, बेलन घुमाते घुमाते उसको बैलेंस कैसे रखना वो सीखने में आता है। आउटलाइन तो मिल गई कि बैलेंस रखना कैसे रखना, तो घुमाने की प्रैक्टिस से ही खुद को ही अपना ज्ञान अपने से आता है। उसी का नाम अपना आत्मा ही गुरु है, क्योंकि आत्मा ही सिखाता है। भीतर में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तो किसी से दिया नहीं जाता, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिस से ही आता है, इसका दूसरा कोई पर्याय नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई इलाज नहीं है।
इसका मतलब जो है थ्योरेटिकल नॉलेज को गुरु से लेना,
हिंट लेना तो गुरु से, फिर सिर्फ हिंट लेना है क्या, आउटलाइन लेना है और प्रैक्टिस उसको इस रुचि अनुसार करना है। इसलिए तो अपने स्वाध्याय में तो बात चलती है, कलकत्ता में तो अच्छी तरह चल रही आगे भी, कि जो भी हमें सुन करके समझ में आता है उसको हम हमारे परिणाम में लागू करें तो यही प्रैक्टिस है और इसी से ही ज्ञान प्राप्ति होगी। सुनने मिलने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होती है, पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होती है, पर फिर भी मान ले के सुनने और पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति होती है तो ग्रहित दिशा दृष्टि है। कैसा है? ग्रहित दिशा दृष्टि है, क्योंकि विधि की दूर हो गई है, उसको व्यवहारता भी नहीं है। क्या ग्रहित दिशा दृष्टि को व्यवहारता भी नहीं होती है?
ऐसे सदगुरु का कितना काल संयोग रहना, ऐसा कुछ
ऐसे सदगुरु का कितने काल तक
रहे,
कितने काल तक सहयोग में रहे तो ये काम हो रहे हैं,
ऐसा कुछ है क्या?
बहुत तुरंत काम है कितने सुगा ने जिनको एक ही घंटा गुरु का सानिध्य मिला, कितना मिला? एक घंटा सानिध्य मिला था प्रवचन का, फिर तो अकेले बैठे थे, गुरुदेव तो पास में नहीं थे, तो जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, तो उसमें कोई काल ज्यादा लगे ऐसे कोई बात नहीं है। मंगल में 33 साल से अड्डा जमा करके बैठे थे लोग, उसको 30 साल हुए थे, ये कहते थे 33 साल के अंदर बैठे हैं लेकिन बात ग्रह कृष्ण प्रकाश के लोगों को बैठते नहीं है, ऐसा बोलते थे। दृष्टि प्रकाश के चार को उनका गुरु की चर्चा करें कि कोई सुनने से या पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति हो जाए ऐसी अपेक्षा रखें तो उसको व्यवहार समझा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही क्यों, वो तो राष्ट्र धर्म हो गया है, तो इसका नाम तो क्या हो गया कि राष्ट्र धर्म हो गया, सुनने का राग पढ़ने का राग है और वही मुख्य ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, इससे कभी धर्म बताओ नहीं है माने तो नया विचार पैदा किया और कुछ नहीं किया।
आउटलाइन बता देते हैं, आउटलाइन भी बता देते हैं, उस लाइन का, उस लाइन का अनुसरण करना अपना काम है।
ठीक है, तब तो हम गुरु आज्ञा में रहे। गुरु ने जो बात कही उस बात का हम अमल करें अनुभव प्रकाश में। कुछ दीपचंद जी ने ये बात कही है कि जो सुपात्र जी होता है वो सुनते ही जो बात सुनी गई उसका अमलीकरण चालू कर देता है, उसमें वो जेब लगाता नहीं है। जो सुनते ही अमल करने का प्रयास करता है वो वर्तमान में पात्र है, उसकी वर्तमान पात्रता है, वो खुली हुई है।
रहने
वाले नहीं है, अनात्म भूत है, उसको आत्मा में स्थान दिया नहीं है, है ही
नहीं।
तो देखना है जब आत्मा की अनुभूति करनी है तो आत्मा में जो भूतार्थ है उससे पूछते ही अनुभव होगा, जो है भूतार्थ है उससे अनुभव कहां से होगा। ये तो जान करके जानने के खाते में डाल देना है, उसका कोई ज्यादा उपयोग करना नहीं है। वो तो इसलिए वो पहले बताते हैं कि कोई यहाँ से प्रयास कर लेते हैं, जैसे वेदांत हुआ तो पर्याय का नहीं मानता है, तो इसलिए बताए गई है कि कोई वेदांत में नहीं चला जाए। खैर व्यवहार व्यवहार के व्यवहारिक समझ है वो भी जिसको नहीं रहे तो उसको तो विशेष विषय के समझ आने की परिस्थिति होती है नहीं।
एक समय प्रश्न उत्तर, गुरु से आउटलाइन ले ली और फिर जब ऐसा भाव आ जाए अब गुरु की क्या जरूरत है, मुझे बावजूद गुरु से गुरु
डॉक्टर से दवा आपने ले ली खाई भी फिर तबियत में कोई गड़बड़ दूसरी मिली फिर क्या करोगे, ऐसे एडजस्ट करने जाओगे आउटलाइन ले ली और अंडरलाइन में जाओगे और फिर कोई तकलीफ होगी तो फिर क्या करोगे। चल रहे हैं और आप सफल हो जाए तो हमारी भी भावना है कि ऐसा ही हो जाए, और गुरु की जरूरत न पड़े, गुरु भी चाहता है कि मेरी जरूरत उसको न पड़े, लेकिन वो गुरु गुरु के स्थान में ऐसा कहेगा, शिष्य ऐसा स्थान में कभी कहने वाला नहीं है। नजर चाहिए इसके लिए, थोड़ी गहरी नजर चाहिए, वास्तव में तो प्रैक्टिस सही अंडरलाइन होती है लेकिन कहीं कहीं प्रयोगात्मक भाषा कुछ अंश में आती है, तो कोई इस प्रकार का नजर वाला होता है तो उसको हिंट मिल जाती है, ऐसा प्रयोग करना चाहिए, पूरी पूरी बात का प्रयोग ना सकती नहीं और नहीं आती।
पर ये ऐसा जो कहा ना कि गुरु की बात सुन ली और कर लिया तो गुरु भूल रहे हैं, गुरु का ना सुना गुरु की बात ना सुने, गुरु की बात सुनने अनुसरण करे और गुरु का भगवान है ऐसा क्यों होता है।
वास्तव में दूसरी बात जिसको गुरु की बात सुनकर के उपकार हुआ वो तो ऐसा महसूस करता है कि निरंतर गुरु के चरण में मुझे निवास मिल गया है, मेरा गुरु चरण में निवास हो गया है, इसकी कृपा मुझे हो गई है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उतना बहुमान आता है तो परमेश्वर बुद्धि का विषय तो करता है, ऐसा ही होता है। तो जहां तक ज्ञानी में परमेश्वर बुद्धि श्री गुरु में नहीं होती है, वहां तक सवार पर बुद्धि भी नहीं होती है, वहां तक गुरु के सत्संग का उपासना भी नहीं होती है। और जो सत्संग को उपासना है वही आत्मा की उपासना करता है, निश्चय से वो आत्मा की उपासना करता है, और व्यवहार से कहे तो वो सत्संग की उपासना करता है, ऐसी बात है। इसलिए सत्संग पर जोर इसलिए ज्ञानियों ने दिया है कि सत्संग की उपासना वास्तव में आत्मा की उपासना है, और उसमें आत्मशुद्धि होने का ही अवसर आता है, और जाता है उसमें तो संशय बात है, कोई शंका की गुंजाइश उसमें।
साधक जी की गुरु के सानिध्य को गौर नहीं करते,
खर्च कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा? तो उस स्थिति में आए बिना ये सब तर्क वितर्क चलता है क्या? ये सब जो तर्क वितर्क कहां तक चलता है, जहां तक उस स्थिति में प्रवेश नहीं है वहां तक प्रवेश होने से ये तर्क उठने की भी गुंजाइश नहीं रहती वहां पर, ऐसी बात है।
आउटलाइन
आ गया नहीं,
क्या
हाँ? नहीं आ गई, तो होता है कि गुरु की जरूरत है कि नहीं है, मुझे
साथ साथ गुरु
ये गुरु के साथ ही चलता है, गुरु के पीछे पीछे ही चलता है, जहाँ इसका पैर पड़ता है वहाँ पैर पैर कदम कदम करो उसके गुरु के मार्ग में चलने से पहले सुपात्र मुमुक्षु जीव को ऐसा दृढ़ निर्धार होता है कि मुझे उसके मार्ग पर ही चलना है, मेरे सचन से कुछ भी मेरे चलना नहीं है। अगर उसके कहे बाद में चलो तो ये मेरा पसंद है, ऐसा उनको पहले से ही निर्धार हो जाता है, तभी तो ज्ञान प्राप्ति होती है, कभी ज्ञान प्राप्त हो सकती नहीं, ऐसा निर्धार होता है। पर उसका एक जीवंत दृष्टांत है सुभाष भाई का। सुभाष भाई को कोई ज्यादा शास्त्र ज्ञान नहीं था, वैसे तो पहले तो ईश्वर करता जी का भी थोड़ा प्रेम का वो हो गया था योग्यता में, ऐसी योग्यता में श्रीमद राजचंद्र जी के एक बहुत समीप माने उत्कृष्ट शिष्य का एक दृष्टांत है। करीब 44 साल बड़े थे, कितने 44 साल, 23 साल की उम्र में जब परिचय में आए तो पांच लेकर 34 साल का उम्र है भागवा, पर वो करीब 67 साल के थे, 67। 44 साल का डिफरेंस था, बेटे भी इसके लिए बड़े होंगे, इसके बाद एक उन जमाने में तो 20 साल से पहले बड़े बेटे हो जाते थे, तो इतने दो जनरेशन पीरियड का गैप था, एक का नहीं दो जनरेशन पीरियड का गैप था। फिर भी जब उसको मिले तो दूसरी दूसरी गड़बड़ थी इस पर करता आ रही थी, लेकिन एक निर्धार हो गया कि मुझे ज्ञानी मिले हैं और उसी के मार्ग में चलने का मेरा दृढ़ निर्धार है, मेरे मुझे मेरे सचंद से कुछ भी विचार भी करना नहीं है और मैं चलना भी नहीं, बस तो आत्मज्ञान के प्राप्त होने का यही एकमात्र योग्यता और कारण जो था ये यही था। इस संक्षेप को पकड़ करके वो चिपक गए थे, बैठ गए थे, तो जो भी ज्ञानी की आज्ञा है वही स्रोत कर दिया, आत्मा उतार दिया और सबके दर्शन को पा लिया, बहुत सब करके चले गए। वो भी कितने आयु के पूरे होने के 17-18 दिन पहले ही उसको अनुभव हुआ है, वृद्धावस्था पूरी हो गई थी, बहुत कमजोर हो गए थे पिछले 8-9 महीने से, तो खटिए पर पड़े रहते थे, और बुखार हमेशा बुखार ही आया करता। प्रताप का बुखार कमजोरी उतने, लेकिन पुरुषार्थ में जवानी आ गई। इतना पुरुषार्थ हुआ कि पुरुषार्थ के पराक्रम से परमात्मा स्वरूप में दौड़ लगाई, थके नहीं उसमें। तो ये हो सकता है, कभी भी किसी भी हालत में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शरीर कमजोर होना से जाने से आत्मा कमजोर हो जाता है, ऐसा कभी नहीं बनता। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या कहा कि सर्वज्ञ के आगम ने शुद्धने से ऐसा कथन से बताया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है जो कि अखंड नित्य और अनादि निधन है। उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिल जाता है। ये द्रव्य दृष्टि का विषय जानने में आने से, यथार्थतया जानने में आने से, पहले जो बुद्धि थी पर्याय बुद्धि, उसका जो पक्ष है वो छूटता है, यानी व्यवहारने का पक्ष छूट जाता है और उसको निश्चय का पक्ष पहले आता है, फिर निश्चय का अनुभव होगा। पहले तो पक्ष बदलना ही पड़ता है, बदलने से ही आगे बढ़ सकता है। पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिल जाता है पर द्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से, अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव कर रहा है। अनुभव करता है तो उसके नाते दोनों से बताया, पर द्रव्यों से भी भिन्न अनुभव होता है, परद्रव्य की जो पर्याय है उससे भी भिन्न साता, इससे भी भिन्न अनुभव होता है और उसके निमित्त से होने वाले जो राम द्वेष विकार में जो परिणाम है उससे भी भिन्न शुद्ध चैतन्य घर का अनुभव होता है। उसका अनुभव करता है तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। तब क्या होता है कि आत्मा रूप परिणमन होता है तो अनात्म रूप परिणमन नहीं होता। परद्रव्य के भाव रूप स्वरूप परिणमन नहीं होता, तन्मय नहीं होते उसमें, इसलिए उसको कर्मबंध नहीं होता और कर्मबंध नहीं होने से संसार से निवृत्ति हो जाती है। उसका संसार मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है। यही भवरोग नाश का उपाय है कि अपना भव से भाव रहित जो स्वरूप है, ऐसे अपने स्वरूप को द्रव कर्म भाव कर्म भव कर्म से भिन्न अनुभव करना, यही भवरोग को नाश करने का उपाय है। इसलिए पर्यायाचित रूप व्यवहार में को गौर करके कहा है, अपने संस्थान में होने पर भी यहां तो उसको भूलने का अवसर है, गौर करने का अवसर है, छोड़ने का अवसर है। जोर से कहते हैं कि ऐ भूतार मेरे में नहीं, मुझे उपाधे नहीं क्योंकि मेरे में नहीं है। पर्याय से तो व्यवहार नहीं हो, एक ही बात है। पर्याय आपसे रूप व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है तो हमेशा पर्याय आपके नए रूप के हैं, दोनों एक ही बात है। पर्याय आपके नए रूप व्यवहार है, जो भी व्यवहार के संबंध भेज जाते हैं वो पर्याय नहीं के विषय है। इसलिए तो पर्यायिक नए रूप जितने भी व्यवहार है उसको गौर करके उसका अवलंबन छुड़ाने के लिए, गौर करने का यही कारण कि उसका अवलंबन लेकर के बैठा है ऐसा नहीं है, उसको छुड़ाने का अभिप्राय है। इसलिए उसको गौर करके ऐसे प्यार कहाँ है, और शुद्ध नहीं को शुद्ध निश्चय नहीं को सत्या सत्या कह करके उसका आलम्बन दिया है, तथा के करके उसका आलम्बन दिया है कि तुम उसका आलम्बन छोड़ो, अपना अखंड परमात्मा है उस परमात्मा के चरण में चले जाओ, वो तो उसको खुद ही है, परमात्मा को क्यों छोड़ते हो। अपना परमात्मा है, सर्वोत्कृष्ट जगत का पदार्थ है, उसे छोड़कर तुम दूसरों को जाता है तो इसे कौन मान है कि जो दूसरे को जाता है, क्यों ध्यान ध्यान करता है दूसरे का, आपको ध्यान करता है निरंतर, तो इसे कौन आगे है, कौन बड़ा है, तो इसे छोड़कर दूसरा का ध्यान करता है, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि ज्ञानी को तो निरंतर धर्म ध्यान में अपना आत्मस्वरूप ही ध्यान में रहता है, ज्ञानी का ध्यान कभी सुनता नहीं है, स्वरूप ध्यान नहीं सुनता है, दिन रात रहे चरक सके नहीं क्या नहीं, दिन रात रहे तद ध्यान में, दिन रात उस ध्यान में रहता है, सोते हैं तो उसी ध्यान में सोते हैं, ज्ञान छूटता नहीं है, परंतु छूटते नहीं है, परंतु छूटे तो ज्ञान दशा रहते हैं, ज्ञान यद्यपि आचरण का पर्याय है फिर भी अविरत समय दृष्टि को ऐसा स्वरूप आचरण निरंतर रहना, एक समय भी छूटता निरंतर रहता है, इसलिए उसको निरंतर आश्रम है, सो गया है तो भी चारों कषाय का उसको आश्रम चालू है, हाँ प्रगति जीव को उपी ही है। क्या आपको स्मरण करना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूं, दिव्य नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, ऐसा स्मरण करना पड़ता है क्या, तो ये भाव तो आप निरंतर रहते हो, अगर कोई गुरुदेव अरे गद्दा है तो कहेंगे संभाल के बोलो, क्या बोलता है तुम, कहां से ऐसी बात आई, इसलिए ऐसी बात आई कि मैं मनुष्य हूं, वो बात चालू रही है, कभी प्रगति में से छुपी नहीं है, मैं मनुष्य हूं, पुरुष है तो उसको वो चालू रहता है कि मैं पुरुष हूं, जो स्त्री है उसको वो चालू रहता है कि मैं स्त्री हूं, क्योंकि ऐसे प्रगति निरंतर चालू रहती है, छुटती नहीं है, पर चालू रहती है। इसका एक और सबूत है कि जब श्री गुरु कहता है कि न तो मनुष्य है, न तो पुरुष है, न स्त्री है, तो एक आत्मा है, तो ऐसा उसको परिणाम नहीं आता है, उसका अनुभव नहीं आता है, होने पर भी अनुभव नहीं आता है, क्योंकि इसकी परिणति उसने मिटाई नहीं, जो विपरीत परिणति बनती है वो छुट्टी नहीं, तो स्वरूप को सुनता है, सुन करके संबंध करता है, संबंध करके चिंतन करता है, मनन करता है, फिर भी अनुभव होता यही कारण है कि प्रगति बैठी है।
ठीक
है बिल्कुल ऐसा ही
है, जब तो बने हुए हैं आप कहते हो बनावा
नहीं है, तो फिर भी ज्ञान बढ़ाया कि ये प्रभु में कुछ बंद है, उसका एक दृष्टांत परमात्म प्रकाश ने बहुत अच्छा दिया है, परमात्म प्रकाश में एक ऐसा दृष्टांत दिया है कि देखिए एक मनुष्य को उसके जो दो पांव हैं वो कच्चे धागे से बांधे, जैसे वो चना कुरमुरा का पैकेट पर बांधते हैं, ऐसा छोटा सा कच्चे धागे का टुकड़ा लेकर के उसके दो पांव बांधे हैं, और वो चिल्लाने लगे कि मुझे बांध दिया मैं कैसे चलूंगा, अब तो मैं चलने के लायक नहीं रहा क्योंकि मुझे दोनों पांव बांध दिया है, तेरे हाथ खुले हैं तो खोल दे उसको, अगर उतना भी तुझे परिश्रम नहीं करना है तो थोड़ा पैर को अलग अलग करके टूट जाएगा, कच्चा धागा है, ऐसे कच्चे धागे से तेरा पांव बांधा है उसको रोता है इतना ना जाने। उतनी सी बात है, पर्यायक्ष में जो भी थोड़ा अटकाव है, प्रतिबंध है, थोड़ा अटकता है कर में, तो वो तो कच्चा धागा है, उसको कोई दम नहीं है। अनुकाल बिटिया रोते रोते क्या रोते रहे ने? श्री गुरु ने माथे पे हाथ रखकर उसको रोना बंद करने के लिए बोला, पर कुदरत इसके सामने आए मुझे क्या बोलते हैं पता नहीं है। हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है, रो तो छानो रख है पर छानो रहता हो नहीं, रोता है उतना से उसको मत रो, ऐसा करने करके रोने का मन नहीं करता है। मर गया मैं, मर गया मुझे बांध लिया है, करते मुझे बांध लिया, मैं कर्म समझता हूँ। एक अच्छा धागा है, उसमें कोई नहीं सोच के कितने परमाणु सूक्ष्म है, क्या ताकत है इसमें, छोटे छोटे तो परमाणु है उसमें, क्या हो सकता है। और तुझे तो देखने में भी आता है इतना सूक्ष्म है, वो धागा तो देखने में भी आता था तो रोता था, तुझे तो देखने में इतने नहीं आता है फिर भी रोता है। ये भी कच्चा धागा है क्या, पहले दिशा में ये भी कच्चा धागा है, हम इसको रस्सी मान लेते हैं वो हमारे दूर है क्या, जरा गौर से सोचना कि ये भी हमारा कच्चा धागा है, हम रस्सी मान कर चलते हैं यही हमारी दूर है, ये भी बिल्कुल कुछ नहीं है, उसमें तो छोड़ने में कोई दम नहीं है, ये बात छोड़ने में कुछ कुछ दुख होने वाला नहीं है, कनिक सी भी दुख होने वाला नहीं है, उल्टा ना उसके सुख होने वाला है, दुख तो होने वाला नहीं है किंतु इससे तो सुख, लेकिन हमको मीठा लगता है क्या, हमको ऐसे जो भाव है वो मीठे लगते हैं और हमारी अनंत शक्ति उस मिठास में कुंठित हो गई है, ऐसी बात होगी इसलिए छूटते नहीं है। क्या कहते हैं कि शुद्ध निश्चय वे को सत्यार्थ कह करके इस निश्चय में के विषय भूत अपना जो मूल स्वरूप है उसका आलंबन श्री गुरु ने दिलाया है, तो दिया है ऐसा कहने में ये तो प्रभु आप ही हो, आत्मा आप ही हो दिया क्या, हमारा आत्मा इसके जेल में था क्या, लेकिन उसका मान कराया तो जैसे दे दिया, जैसे मुझे मेरा सर्वस्व मुझे दे दिया ऐसे कहने में आलंबन दिया है। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलंबन नहीं रहता, ये पूर्ण दशा में है, फिर न ज्ञान नहीं रहता, न इसे जो आलंबन दिया जाता है सुधार स्वरूप का न के विषय दूर का, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर ये नए का विषय आलंबन देने की बात नहीं रहती है।
नहीं
फिर आधार निराधार का सवाल नहीं रहा, आत्मा पूरा पूरा प्रकट हो गया, उसमें फिर आधार निराधार का प्रश्न खत्म हो गया, फिर बातें खत्म हो गई, पूरा पूरा प्रकट हो गया जैसा आया
जैसा,
नहीं छोड़ गया नहीं का विषय को तो आत्मा है, तो आत्मा मिट नहीं गया है, पर्याय व्यवहार नहीं का विषय वो भी मिट नहीं गई है, केवल यह नहीं कि सब व्यवहार चालू है पर अपने आत्मा भी मौजूद है, दोनों नहीं का विषय मौजूद है लेकिन दोनों नहीं नहीं है, केवल एक और नहीं होते खुद प्रकट हो गया, फिर आलम्बन लेने का आलम्बन तो उसने दिलाया कि पहले पर्याय सिखने का विषय जितने पदार्थ है उसका आलम्बन ले रहा तो वहां से छुड़ा कर इसका आलम्बन दिया, फिर इसका आलम्बन लेने से अवस्था पूर्ण हो गई तो फिर कोई प्रश्न रहता नहीं है। जैसे हम चलते चलते घर पहुंचे, फिर चलना क्यों बंद कर दिया, पहुंच गया इसलिए बंद कर दिया, ये तो वही पचाल है। चलते चलते हमारे घर पहुंच गया, लेट गए या बैठ गए, बात खत्म। फिर वहां पर प्रश्न होता है कि क्यों नहीं चलते अभी, इतना चलो तो अभी क्यों चलना बंद कर दिया, सवाल नहीं चलता। आलमन नहीं रहता इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध ने को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध ने सर्वथा असत्यार्थ ही है, ऐसा समझना नहीं है। जानने का विषय है और जान करके जानने के खाते में डाल देने का है, ऐसा रखना है। लेकिन है ही नहीं ऐसा माने तो एकाग्र हो जाएगा, संतुलन रहेगा, निश्चय आवश्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसा मानने से वेदांत मत वाले इसका इनाम दिया है, ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा और उसको मानते हैं, माया मानते हैं, जैसे कोई माया होते हैं कि कुछ चीज नहीं है, ना दिखती है, सिर्फ है नहीं, ऐसा वो संसार को मानते हैं, संसार को सर्वथा और उसको मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा। ऐसे वेदांत की तरह एकांत पक्ष वाला मत वाला हो जाएगा। इसलिए बाहर में तो जैनी कहलाया जाएगा, भीतर में वेदांती हो जाएगा। द्रव्यार्थी होने का विषय निश्चय नहीं का एकांत करने से वेदांती हो जाएगा, पर्यायार्थी होने का एकांत करने से मोक्ष हो जाएगा। ये बहुत पर्यायार्थी की विकृति वाला संप्रदाय, पर ये सभी दर्शन का विषय बुद्ध आत्मा है, उसको ठीक तरह से नहीं समझने से उसका जिसको एकांत हो गया, पर्याय को गौण कराया और गौण भी नहीं रखा ज्ञान में, ज्ञान में से ही बात छूट गई कि है ही नहीं, तो हो गया वो विचार। इस प्रकार यो शुद्धने का आलम्बन भी, इस प्रकार से यह शुद्धने का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि बना लाएगा। इसलिए वहां भी पंडित जयचंद्र जी ने कृपा करके लाल बत्ती रखी है, क्योंकि उपदेश तो ऐसे ही आएगा, तो यह सत्यार्थ है, यह भूतार्थ है, जोर जोर से कहेंगे ये सत्यार्थ है और भूतार्थ है, लेकिन ऐसा नहीं एकांत कराने के लिए तो नहीं कहा है, ये हमेशा ख्याल में रखना। यानी व्यवहार और निश्चय दोनों की संधि होती है, यानी